मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 25 सितंबर 2019 है और आज के इस एफईआईएस के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल न्यूज में आपने एक बड़ी अच्छी न्यूज सुनी होगी और सच पूछिए तो हम जैसे बहुत से लोग जो सिनेमा को थोड़ा सा क्रिटिकल तरीके से देखने और समझने की कोशिश करते हैं उनको इस न्यूज से बहुत ज्यादा संतोष भी मिला है और खुशी भी हुई है। आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। कल अमिताभ बच्चन जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, जैसे कि आप यूं कह लीजिए कि जो हम अलंकार देते हैं भारत रत्न पद्म विभूषण, उसमें जो भारत रत्न की स्थिति है, आप यूं कह लीजिए कि फिल्म पुरस्कारों के तहत जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है उसकी भी यही स्थिति है। तो दोस्तों, आज क्यों नहीं हम लोग अमिताभ बच्चन जी के माध्यम से ही जिंदगी के बारे में कुछ बातें करें। आइए, मैं सिलसिलेवार कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, पहली बात यह है कि जो किसी भी पुरस्कार की जो प्रतिष्ठा होती है या यूं कह लीजिए कि जो विश्वसनीयता होती है वह इस बात पर निर्भर करती है कि वह सही मायने में योग्य व्यक्तियों को दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए कि नोबेल पुरस्कार इतना प्रतिष्ठित पुरस्कार है लेकिन उस पर भी उंगलियां बहुत जबरदस्त रूप से उठने लगी हैं और केवल अभी नहीं उठ रही है, पहले से भी उठ रही थी। उन्होंने सोची कि शांति का पुरस्कार हमारे बापू को दिया ही नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नहीं दिया। खैर, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अमिताभ बच्चन जी को यह पुरस्कार देकर के सरकार ने इस पुरस्कार की प्रतिष्ठा को फिर से कायम किया है। जी हाँ, फिर से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से ऐसे समालोचक थे कि इनसे पहले जिनको पुरस्कार मिला उनके बारे में कहा यह जाता था कि ठीक है, चलिए आप इनके योगदान को रिकॉग्नाइज कीजिए, लेकिन इससे भी बड़े योगदान देने वाले लोग अभी सिनेमा जगत में हैं, पहले उन्हें तो दे लीजिए। और आज अमिताभ बच्चन जी के साथ ऐसा ही हुआ। अभी दो जो बहुत बड़े हमारे राइटर रहे हैं, सलीम जावेद साहब, यानी दोनों का नाम मैंने एक साथ ले लिया, सलीम जावेद इनकी जोड़ी रही है, उन्होंने यही कहा है कि अमिताभ बच्चन को बहुत पहले यह पुरस्कार मिल जाना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, ये जो पुरस्कार मिला है आप देखिए कि 1969 में अमिताभ बच्चन ने सात हिंदुस्तानी फिल्म से फिल्म जगत में प्रवेश किया था। इससे पहले वो वेस्ट कलकत्ता में एक कंपनी में शायद अकाउंटेंट वगैरह के पद पर थे और सात हिंदुस्तानी से उन्होंने फिल्म जगत में शुरुआत की और 2019 में उन्हें यह पुरस्कार मिला। जोड़ करके देखिए कि उनको इस पुरस्कार को हासिल करने में कितने साल लग गए। अब आप जोड़िए, मुझे मत कहिए कि मैं जोड़ूं, 69, चलिए हम 70 मान लेते हैं, 30 साल उधर और 19 यानी कि 20 साल इधर, इसका मतलब हुआ कि 50 साल लग गए इस एक क्षण को हासिल करने में, यानी कि पूरी जिंदगी उन्होंने इसमें लगा दी, तब जाकर के कहीं वो सर्वोच्चता के इस शिखर पर पहुंचे हैं। आज वो 76 ईयर्स के हैं, अगर इसमें से आप 50 साल घटा दें कि वो फिल्म जगत में हैं, तो 26 साल की उम्र के जब वे थे तब वे इस सेवा में कह लीजिए, मनोरंजन जगत में कह लीजिए आ गए थे। सेवा में इसलिए कह रहा हूं कि एक जो मनोरंजन का क्षेत्र होता है वो सर्विस सेक्टर में आता है। तो मित्रों, 50 साल, 26 साल की उम्र के बाद अनवरत लगातार वो एक फील्ड में काम कर रहे हैं। बीच में राजनीति में थोड़े समय के लिए वो गए थे और बहुत जल्दी वापस लौट आए, समझ में आ गया कि ये राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। और ये कम बड़ी बात नहीं है कि आपको समझ में आ जाए कि ये मेरे बस की बात नहीं है, लोगों की समझ में नहीं आती, वो तो लगता है कि नहीं नहीं मेरे बस की तो बात है, लोग मुझे नहीं करने दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा लेसन है अमिताभ बच्चन जी का दिया हुआ पूरे के पूरे आप कह लीजिए कि दुनिया को। दोस्तों, जब हम ऐसे एक्टर्स को देखते हैं, एक्ट्रेसेस को देखते हैं, सफल लोगों को देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे इनका जो पूरा का पूरा जीवन है वो फूलों की सेज वाला जीवन है। ये कितने आराम से रह रहे हैं, कितने सुखी हैं। नो डाउट कि आराम से रह रहे हैं, सुखी हैं, वो सारे के सारे भौतिक स्तर पर सच हैं, लेकिन इनकी जो आंतरिक वेदना होती है, जो स्ट्रगल होता है, जो आशंकाएं होती हैं, जो दबाव होते हैं, जो तनाव होते हैं, उनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि मालूम है कि छोटी सी हमारी गलती पूरी दुनिया में जानी जाएगी और फिर उसका पता नहीं किस तरीके से विश्लेषण किया जाएगा। और अमिताभ बच्चन जी की तो अपने ही जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, खासकर दो उतार चढ़ाव के बारे में तो आपको मालूम ही होगा कि जब एक बार बुरी तरह से बीमार पड़ गए थे, खासकर वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उसमें पेट में जोर से घूसा पड़ गया और उसकी वजह से, मतलब ये समझ लीजिए कि बिल्कुल डॉक्टर्स ने ये कह दिया था, क्योंकि उन क्षणों के हम लोग गवाह रहे हैं, मुझे अच्छे तरीके से वो दिन याद है जब डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग प्रार्थना कीजिए, जो भी हो सकता है अब केवल ईश्वर के द्वारा प्रार्थना से ही हो सकता है। और मुझे याद है दोस्तों कि पूरा हिंदुस्तान उस समय अमिताभ बच्चन जी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा था। जो भी हुआ हो, अमिताभ बच्चन जी स्वस्थ हो गए। ये है उनके जीवन का एक उतार। दूसरा यह है कि फिर जब उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की, तो कंपनी शुरू करने के बाद फिल्म निर्माण और इन सब की कंपनियां शुरू की थी, और उस कंपनी में उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, वो बहुत ज्यादा कर्ज में आ गए, वो डिप्रेशन में आ गए, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गए। लग रहा था कि अब अमिताभ बच्चन फिनिश्ड हो गए हैं, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से उभरे। बहुत अच्छा है उनका एक इंटरव्यू, मुझे याद है कि बहुत पहले किसी मैगजीन में छपा था, उसमें उन्होंने कहा कि एक दिन मैं ऐसे ही निराश हताश बैठा हुआ था, तो फिर मैंने कहा कि चलें अब फिल्म में ही काम करें, वही काम आता है। तो एक फिल्म निर्माता के पास गए, चूंकि मैं नाम थोड़ा सा भूल जाता हूं इसलिए मैं जानबूझकर नहीं ले रहा हूं, और बहुत बड़े फिल्म निर्माता थे, तो उनसे उन्होंने कहा कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं फिर से शुरुआत करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो फिल्म नहीं बना रहा हूं, मेरा बेटा फिल्म बना रहा है, आप उससे मिल लीजिए। वो उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं फिल्म बना रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं पैसे नहीं दे सकूंगा या बहुत कम पैसे दूंगा, कुछ इस तरह की बात थी। तो अमिताभ बच्चन जी ने क्या कहा मालूम है, कि मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया हूं, मैं आपसे काम मांगने आया हूं, मैं आपसे काम मांगने आया हूं। दोस्तों वहां से फिर अमिताभ बच्चन जी की एक अलग पारी की शुरुआत हुई, और इसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, और फिर जैसे ही कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी एक नई भूमिका में अवतरित हुए, तो पूरा हिंदुस्तान उनका दीवाना हो गया। चलिए ये तो एक अलग बात है कि दीवाने हो गए हिंदुस्तान, उनको बहुत अच्छी एक्टिंग आती है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या आदमी सिर्फ एक्टिंग से ही किसी को इतना रिगार्ड दे सकता है, इससे भी बड़ी बात कि इतना प्यार कर सकता है। मुझे लगता है कि रिगार्ड जो है प्यार के सामने बहुत छोटा शब्द है, बहुत ही छोटा सा शब्द है। प्यार पाना दुनिया का सबसे कठिन वस्तु है, दुनिया के सबसे अनमोल जो रत्न है वो है प्यार। और जो मैं प्यार को कह की बात कर रहा हूं, तो उसे आप रोमांटिक प्यार में मत लीजिएगा कि जो एक पर्टिकुलर एज में ही होता है, नो डाउट कि वह भी प्यार ही है, लेकिन इसे आप थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखें। पूरा हिंदुस्तान आज किस तरीके से अमिताभ बच्चन जी को प्यार कर रहा है, और ये जो फैसला हुआ है दादा साहब फाल्के पुरस्कार का, न्यूज में ये हाईलाइट किया जा रहा है, सर्वसम्मति से जो जूरी होती है, उन जूरी के जितने भी मेंबर्स थे, क्योंकि मुझे भी कई इस तरह के अवार्ड की समितियों में सदस्य रहने का मौका मिला है, तो वहां पर विचार विमर्श होता है, कुछ लोग किसी के पक्ष में होते हैं, कुछ लोग किसी के पक्ष में होते हैं, और बहुमत से फैसला हो जाता है, लेकिन उनके लिए तो किसी पक्ष विपक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ी, सर्वसम्मति से उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि अमिताभ बच्चन जी के प्रति जो हमारी अपनी जो सद्भावना है, जो प्रेम है और सम्मान है, आज भारत उन्हें यह अवार्ड देकर के सही मायने में उन्होंने जो कुछ भी हमारे लिए किया है और अभी भी कर रहे हैं उसकी एक छोटी सी अदायगी की है। लेकिन मित्रों अभी अमिताभ बच्चन जी के बारे में और मुझे आप सबसे बातें करनी है, अभी खत्म नहीं हुई है, बस थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, कल हम लोग इनके व्यक्तित्व के बारे के जो दूसरे पहलू हैं, जो बहुत ही अनोखे पहलू हैं और जिसका मैं स्वयं यूं कह लीजिए कि साक्षी रहा हूं, उसके बारे में बातें करूंगा। तो अब आप सब मुझे इजाजत दें, नमस्कार।